रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
पंपा सरोवर के पास नारद जी आए। नारद जी क्यों आए? नारद जी को पश्चाताप हुआ कि भगवान को हमने साप दे दिया था और भगवान नारी के विरह में रोते फिर रहे हैं। उनका रोना कैसा है? यहां आए तो नारद जी का भाव ही कुछ और हो गया। हमने तो हमारे ही समान रोते बिलकते फिरने की बात कही, यहां तो भगवान खूब आनंद में है। आनंद में रोना उनका, कि आनंद में भी रोना होता है कि खूब आनंद में इसलिए होता है कि ऊपर से विरह की लीला है, अंदर से बड़ा आनंद है, विवेक जागृत है भगवान के। नारद जी महाराज ने बहुत प्रसन्न जाना, बहुत प्रसन्न जान करके उनसे राम नाम की महिमा को प्रकट करवाया कि और नाम के लिए हम कुछ नहीं बोलते हैं, आपका राम नाम है ये सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर कहा कि महाराज अब मुझे संतों का लक्षण सुनाओ। देखो भगवान के लक्षण है वो भगवान नहीं बोलते, और संतों के लक्षण है वो संत नहीं बता सकते। तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आप संतों के लक्षण बताओ। बड़े चतुर हैं नारद जी, क्योंकि संत में जो महिमा आती है वो भगवान की आती है। भगवान में यदि वो संत न लगा हुआ हो तो वो संत ही नहीं है। इसलिए नारद जी ने बड़ी चतुराई की कि भगवान की भक्ति को जाने और भक्त का रहस्य समझें। तो कहा कि महाराज सुनहु राम विज्ञान विशारद संतन के लक्षण रघुवीरा, संतों के लक्षण कहो। तो नारद जी महाराज से भगवान कहने लगे कि देखो मैं संतों का लक्षण बताता हूँ जिस कारण से संतों के हृदय में मैं रहता हूँ। तो संतों के हृदय में रहते हैं इसका मतलब औरों के हृदय में नहीं रहते क्या? औरों के हृदय में भी तो रहता हूँ, पर संत है वो अपने हृदय में मुझे जान लेते हैं। मैते तेषु चाप्यं, वो मुझ में रहते हैं मैं उनमें रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में संत रहते हैं औरों में नहीं रहते हो भगवान, औरों में न रहे तो व्यापकता ही नहीं होगी, रहते सब में है। संत पहचान लेते हैं, वो पहचानते नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनके अंदर निवास करता हूँ। संत का लक्षण क्या है कि षट विकार जित अनग अकामा, सात छह विकार है माने काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार, ये छह विकार है। छह विकारों से जो ऊपर उठ जाता है वो संत कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। और जो संत होता है वो अमित बोध, उसको ज्ञान उसका बड़ा गहरा होता है, और मित भोगी, संसार की चीजों में कम चीजों को काम में लेता है, सस्ती चीज को काम में लेता है, संसार की वस्तुओं का उपयोग निर्वाह के लिए करता है, अच्छी अच्छी चीजों का शौकीनी उसमें नहीं होती। कपड़ा भी पहनेगा तो बहुत अच्छा कीमती नहीं पहनेगा, साधारण कपड़ा पहनेगा, साधारण ही निवास करेगा। जितने ज्यादा संसार के भोगों में उलझा रहेगा उतनी वो भगवान की भक्ति से वंचित होता है और दूसरों को मान देने वाला होता है। ये भगवान का स्वभाव उसमें आता है। जैसे भगवान सब ही मान प्रद आप अमानी, ऐसे सावधान मानद मदहीना। दूसरों का मान करने वाला होता है, उसके अंदर से अपनी मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। ये मान आदर सत्कार की इच्छा होती है, ये दूसरों को देने से ही खत्म होगी और खत्म नहीं हो सकती। आवे उससे बहुत प्रेम से बोलो, बहुत प्रेम से उनका सम्मान करो, अपने अंदर सम्मान की भावना, लेने की भावना मिट जाएगी। और संसार को दुखमय समझते हैं, इसलिए संसार से वैराग्य की भावना उनमें स्वाभाविक रहती है। जिस वस्तु में हमको सुंदरता दिखती है वो अज्ञान से दिखती है। संत को कहीं संसार में सुख और सुंदरता दिखती नहीं है, क्योंकि सुख और सुंदरता उन्होंने मुझमें जब रख ली, मम चरण सरोज प्रिय, मेरे चरण कमलों में उसका प्रेम हो गया, तो देह गेह में प्रेम होने का प्रश्न ही नहीं है। कि शरीरों में प्रेम हो और घर में प्रेम हो, वस्तुओं में प्रेम हो, ऐसा उसके नहीं होता। और उन संतों की कोई महिमा गाए तो उनको बहुत संकोच होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे कोई मारपीट कर रहा हो, ऐसे संत को अंदर से तकलीफ होती है। और एक बात है कि जिसकी बात बड़ी कठिन होती है हर आदमी के लिए, परगुण सुनत अधिक हर्षाई, दूसरे की महिमा सुनने पर अपने हृदय में खूब प्रसन्नता हो, ऐसे संत बड़े बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। कितनी आफत आ जाए लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, त्याग ही नहीं नीति, नीति का त्याग नहीं करते, और अपने स्वभाव में बड़ी सरलता रखते हैं। वज्रादपि कठोराणि और मृदूनि कुसुमादपि, संत होते हैं वो वज्र के समान कठोर होते हैं। कठोर कैसे? जैसे नारियल होता है वैसे कठोर होते हैं। वहां तो वज्र के समान बता दिया, नारियल होता है ऊपर से कितना, कोई नारियल को मुक्की से फोड़ना चाहे नहीं फोड़ सकते, कोई बहुत बड़ा ताकत वाला हो तो बड़े, वो जटा भी है उसके ऊपर, वो टोपी भी है, उसको फोड़ना बड़ा मुश्किल है। नारियल के बाद अंदर जो गोटा होता है उसको तो फोड़ ही देते हैं, नारियल को कौन फोड़े। इतने संत होते हैं, अंदर से तो होते हैं गिरी के समान और ऊपर से होते हैं वे नारियल के समान। इसमें पानी वाला नारियल होता है वो तो बहुत ही कठोर होता है, उसको तो कोई पटक करके भी नहीं फोड़ सकते, उसको तो जो है छीलने के लिए लोहे का एक दांता होता है उससे उसको करते हैं। तो संत होते हैं वो अपने नियम के लिए बड़े कठोर होते हैं और दूसरे के लिए बड़े कोमल होते हैं। अपने पर कोई आफत आती है उसको सहन करने में वे बड़े कठोर होते हैं और दूसरे का कोई दुख दे रहे एकदम पिघल जाते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। और ज्यादा संसार के प्रपंच में नहीं पड़ते, प्रपंच में नहीं पड़ते, उनको प्रपंच सुहाता भी नहीं है। और अंदर से ज्ञान दृष्टि काम करती है। देखो वैराग्य है और ज्ञान है, वैराग्य ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो, और ज्ञान न भी हो तो वैराग्य भी ज्ञान करा देगा। एक संत थे, उनके अंदर वैराग्य बहुत था, ज्ञान बहुत कम था, लेकिन संसार उनको अच्छा नहीं लगता था, संसार से कोई ज्यादा संबंध भी नहीं रखते थे, तो उनके कोई कमी नहीं, माने उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं रही। और एक संत थे जिनको शास्त्रों का बोध बहुत था, बड़ा अच्छा विवेचन करते थे, पर संसार से वैराग्य नहीं था। दोनों एक जगह बैठे तो वहां ये बात हुई कि साहब ये इनका जीवन अच्छा है कि इनका, तो कहते साहब प्रवचन तो इनका अच्छा है और जीवन इनका अच्छा है। एक वाणी से प्रवचन देना, एक जीवन से प्रवचन देना। जीवन से जो प्रवचन होता है वो प्रभावकारी होता है, वाणी से बोलने में कोई फायदा नहीं। भगवान कहते हैं कि देखो नारद जी, साधुन के गुण जेते कही न सकें सारद श्रुति तेते। संतों के जो गुण होते हैं उनको वेद भी पूरे नहीं कह सकते हैं, सरस्वती भी पूरी नहीं कह सकती है। मैंने जो तुमको ये छांट छांट करके संतों की महिमा की बात कही है, ये बातें तो है, इतने ही गुण नहीं, बहुत गुण है संत में। नारद जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि महाराज आपने अपने मुख से संतों के गुण सुनाए, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। नारद जी वहां से ब्रह्मलोक गए। देखो भागवत में या रामायण में जहां कहीं कई कई ऐसे प्रसंग आते हैं तो नारद जी महाराज ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक क्यों जाते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ भगवान की भक्ति और प्रेम की बातें होती हैं वे ब्रह्मलोक में मिलती नहीं है। तो नारद जी जाकर उनको सुनाते हैं, उनको कृतार्थ करते हैं, फिर पृथ्वी पर आते जाते रहते। सिर नाय बार ही बार चरणनी ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरिरंग रहे। संसार से आशा का त्याग कर दो, ये वस्तु हमको सुख देगी कि ये व्यक्ति सुख देगा कि आगे के आने वाले समय में हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी आस को छोड़ करके भगवान के प्रेम रंग के अंदर ही रंगना चाहिए, यही जीवन की सफलता है। और ये दीप शिखा सम युवती तन मन जनि होशी पतंग, ये संसार के जितने भी भोग हैं ये दिखने में अच्छे लगते हैं परंतु परिणाम इनका अच्छा नहीं होता। जिसमें ये जो प्रसंग आया है, ये यहाँ प्रसंग बड़ा विचित्र है। हिरण को देखा सीता जी ने, सोने का हिरण देखा तो सीता जी को क्या हो गया। भगवान ने कहा अच्छी बात है, तुम सोने का हिरण चाहती हो, हम तुमको सोने की लंका में बैठा दे, जाओ बैठ जाओ वहां। तो दीप शिखा सम युवती तन मन जनी होसी पतंग, भजई राम तज काम मद करहिं सदा सत्संग। संसार के विषय भोग दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारा मन है वो पतंगे के समान उस भोगों की अग्नि के अंदर जाकर चिड़चिड़ करके समाप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति में लग जाओ, कामना का और मद का अहंकार का त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाओ। कि महाराज भगवान की भक्ति तो होती नहीं, भक्ति कैसे करे, कामना का त्याग कैसे करे, तो करे ही सदा सत्संग। सत्संग के द्वारा इन सब बातों के त्याग का और भगवान में प्रेम करने का बल मिलता है। जैसे बताया नेवला और सांप है, दोनों लड़ते हैं, तो सांप की जब फुंकार नेवले पर लगती है तो नेवले पर जो है जहर चढ़ता है, तब नेवला भग करके एक बूटी होती है, उस बूटी को जाकर के जो सूंघता है तो वो जहर तो उतर जाता है और नया बल मिलता है जाकर के सांप से फिर लड़ता है। ऐसे करते करते अंत में विजय नेवला की होती है, वो सांप को मार देता है। ऐसे ही मनुष्य को बराबर सत्संग के अंदर जाकर के सत्संग का बल प्राप्त करके अपने अंदर जो काम का, अहंकार का, मद का नशा चढ़ा हुआ है उसको तो उतारे और भगवान के प्रेम के अंदर वो डूब जाए। इस प्रकार से ये अरण्य कांड समाप्त होता है। अब जो है चौथा कांड आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में दो श्लोक के अंदर वंदना है। एक श्लोक में तो राम लक्ष्मण की वंदना है और एक श्लोक में भगवान के नाम की वंदना है। सीता जी का यहां सीता अन्वेषण तत्पर हो, सीता जी का नाम तो दिया है परंतु सीता जी के साथ में वंदना नहीं, क्यों? सीता जी तो रावण के वहां गई, इसलिए यहां पर सीता अन्वेषण तत्पर का। राम और लक्ष्मण कैसे हैं? एक तो है कमल के फूल के समान सुंदर, एक है कुंद कुंदेन्दीवर सुंदर हो अति बलव, एक है चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाले, वो तो है लक्ष्मण जी, और कुंदेन्दीवर सुंदर हो अति बलव, और एक है कमल के फूल के समान, वो है भगवान राम जी। ये दोनों के दोनों सीतान्वेषण तत्पर हो, सीता जी की खोजने में लगे हुए हैं और दुनिया को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। भक्ति कैसी? भक्ति भगवान का या सीता जी की जो खोज है ना, ये प्रेमी भक्तों को एक बल देने वाली बात है कि भगवान माया में डूबी रहने वाली सीता के खोज करके दुनिया को ये बताते हैं कि मैं प्रेमी लोगों को कितना प्रेम देता हूँ। ऐसे जो भगवान में लगे रहने वाले होते हैं उनको आश्वासन मिलता है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान के प्रेम के लिए भक्ति करना है। आजकल हम लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, तो हमारे मन को लगाने के लिए थोड़े कोई भक्ति करनी है। हमको तो भक्ति करनी है भगवान को खुश करने के लिए। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्ति प्रदौ तौ ही न। फिर भगवान के नामामृत की महिमा करते हुए कहते हैं कि नामामृत आया कहां से? ये वेद रूपी समुद्र में से राम नाम रूपी अमृत प्रकट हुआ। जैसे समुद्र मंथन से अमृत पैदा हुआ था, इसी प्रकार से वेद रूपी समुद्र से ये राम नाम रूपी अमृत पैदा हुआ है। और जैसे वो जहर भगवान शंकर ने पिया, ऐसे ये भगवान शंकर के चंद्रमा के समान सुंदर मुख के ऊपर ये अमृत या नाश्ता रहता, उस जहर को नष्ट करने के लिए ये राम नाम रूपी अमृत भगवान शंकर ने पी लिया। संत बोलते हैं कि कैसे पिया उन्होंने? यूं जहर पी करके रा करके तो जहर पी लिया, या तो रा की गांठ आ गई, रह में गांठ आती है, तो ये गांठ आ गई तो नीचे तो अमृत गया नहीं, वो जहर गया नहीं। और मैं बोलते ही होठ बंद हो जाते हैं राम, तो मैं बोलते ही होठ बंद होते हैं तो ये जहर फिर बाहर मुंह से बाहर निकला नहीं तो बीच में ही रह गया। तो वो राम 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 के बल पर उन्होंने समुद्र का कालकूट जहर, हलाहल जहर था, वो हलाहल जहर पी लिया था। और ये राम नामामृत क्या है कि संसार में बार बार जो आवागमन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, उसकी दवा है। जमा ये जन्म मरण हमारा समाप्त हो जाए उसकी दवा है राम नामामृतम, राम नाम करो। और श्री जानकी जीवनम, और लक्ष्मी ही जानकी के रूप में अवतार ली थी, उनका ये राम नाम ये जीवन है, नहीं तो वो तो मरी जाती। यदि राम नाम का जप नहीं करती तो सीता जी लंका में मर ही जाती। राम नाम ने उनको जिलाया, हरदम राम 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 करती रही। इसलिए संसार में वे व्यक्ति बड़े धन्य हैं जिनके मुख के ऊपर भगवान का नाम नाचता रहता है। और हमारे भगवान शंकर भी कितने दयालु हैं कि वो काशी में जाकर निवास करते हैं। बड़ी पवित्र भूमि है काशी, मुक्त जन्म मही खान ज्ञान खानी अगहानि कर, सारे ज्ञान का एक खजाना बनी हुई ये काशी नगरी, उसमें भगवान शंकर सबको राम नाम सुनाते हैं। देखो काशी में मरते हैं ना, सबके कान यू ऊंचे होते हैं ऊंचे, क्योंकि वहां ऐसी बात है कि भगवान शंकर हैं, वो यूं कान पकड़ करके उसके अंदर राम नाम बोला राम नाम, तो यहाँ यूं कान ऊंचे ही रहते हैं। काशी में मरने वाले के कान ऊंचे रहते हैं क्योंकि भगवान उनको सदाव्रत राम नाम का सदाव्रत देते हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस जहर से सारे देवता लोग जल रहे थे, घबरा गए थे कि अरे हलाल जहर निकल गया क्या करें, भगवान शंकर ने उसी जहर को राम नाम के बल पर पी लिया। अरे मनुष्यों इस संसार में आप लोग रात दिन जहर पी रहे हो, राम नाम का अमृत नहीं पी रहे हो, तो तुम्हारे अंदर गया हुआ ये जहर कितना नुकसान करने वाला है। ये संसार में जो आसक्ति है, ये प्रपंच है, ये इसमें झंझट है, ये जहरी तो है, इस जहर को तो पीते नहीं हो। भगवान शंकर ने जहर पिया समुद्र का, वो दुनिया के हित के लिए पिया, लेकिन राम नाम के पीछे पिया, और आप लोग जो है इस प्रकार से जहर पीते जा रहे हो। भगवान शंकर के कितनी दयालुता है, उन्होंने राम नाम का अमृत पी करके हम लोगों को सावधान किया। ते ही न भजसी मन मंद, ये मन तो कितना मंद है, कितना पापी हो गया, ऐसे भगवान का स्मरण करता ही नहीं। ऐसे तुलसीदास जी महाराज राम नाम के सहारे से अब आगे किष्किंधा कांड की कथा सुनाते हैं कि ऋषिमुख पर्वत पास में ही है पंपा सरोवर के, वहां पर पहुंच गए। सुग्रीव का ध्यान गया, वो राम और लक्ष्मण को देखा, तब कहते हैं सुग्रीव के साथ तो 5-7 बंदर थे, उनका ध्यान नहीं गया। सुग्रीव का क्यों गया? भाई सुग्रीव हरदम डरता रहता था ना, इसलिए सुग्रीव ने चौकन्ने होकर चारों तरफ दृष्टि डाली तो राम और लक्ष्मण पर दृष्टि गई। अपने चतुर सचिव में से हनुमान को बुलाया, अरे हनुमान वो देखो कितने सुंदर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तुम जाओ ना। अब देखो भय के अंदर आदमी क्या बोलता है, तुम जाओ ना बटु रूप धारण करो। बटु रूप माने छोटा सा बच्चा बन के जाओ, ब्रह्मचारी बच्चा, तो बटु रूप जाओ दे, कैसे जाने जी से, और वहां जाकर के और मेरी तरफ देखते रहना, इशारा कर देना, या तो कह देना भग जाओ या कह देना कोई चिंता नहीं है, तो कुछ नहीं इशारा कर देना हमको। यदि बाली ने मेले मन वाले बाली ने इनको भेजा है तो मैं अभी बाबा ऋषिमुख छोड़ करके चला जाऊं, तुम जाकर के देख करके आओ। तब हनुमान जी गए, कैसे गए? विप्र रूप धरी। अरे आपको तो कहा था बटु रूप से आप ब्राह्मण का रूप क्यों बनाए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। देखो बटु रूप अलग होता है, ब्राह्मण रूप अलग होता है। ब्राह्मण में देखो बटुक तो होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो गुरुकुल में निवास करते हैं, छोटी अवस्था होती है, वो ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, तीनों गुरुकुल में निवास करते थे, तो धरी बटु रूप ठीक था। लेकिन यहाँ ब्राह्मण रूप धारण करके गए, तो ये ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी महाराज क्यों गए? तो सुग्रीव का बोलने का अर्थ तो यही था ना कि भाई तुम गुप्तचर बन करके जाओ। अब ये बटु रूप बोला, ये घबराहट से बोला है, अविवेक से बोला है। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया कि नहीं, बटु रूप जाने से तो ठीक नहीं रहेगा, विप्र रूप से जाना चाहिए, ब्राह्मण के रूप में हमको जाना चाहिए। तो ब्राह्मण रूप से गए और जाकर के देखो, अब ब्राह्मण रूप से गए, पास में गए तो उनको पता चल गया कि विचित्र पुरुष है। नाई माथा नवा करके सिर झुका करके उन्होंने प्रणाम करते हुए पूछा, तो भाई प्रणाम तो भगवान को करना चाहिए था, ब्राह्मण आकर के सिर झुकाए, इसका क्या अर्थ है? हनुमान जी महाराज उनको देख करके समझ गए थे। इसलिए भगवान के सामने हनुमान जी बोलते हैं, ओ कोतुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्री रूप फिरौ बनबीरा। एक क्षत्री का रूप बनाए हुए श्यामल और गौर शरीर वाले आप कौन हो, कवन हेतु विचरौ बन स्वामी। आप हमारे स्वामी हो, स्वामी मालिक हो। आप कैसे संसार जंगल में विचरण कर रहे हो महाराज, ये जमीन तो बड़ी कठोर, चरण है आपके बड़े कोमल। आपके सुंदर श्री विग्रह को देख करके ऐसा लगता है कोई नरनारायण तो नहीं है आप। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, लोगों का पाप दूर करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर आप आए हो क्या? तो भगवान को ये कहना चाहिए था कि हाँ या ना। भगवान ने हाँ या ना नहीं कहा, क्योंकि भगवान अब कैसे कहे। अभी तो ये हनुमान जी पहली बार मिल रहे हैं, तो कैसे कहे। तो हनुमान जी महाराज को बहुत नपे तुले शब्दों में भगवान बोलते हैं कि देखो, हम दशरथ नंदन अयोध्या नरेश दशरथ जी के बेटा हैं, उनकी आज्ञा को मान करके वन में आए हैं। राम और लक्ष्मण हम दोनों भाइयों का नाम है। हमारे साथ में जनक जी की पुत्री हमारी नारी वो भी थी जंगल में, और एक निशाचर ने उसको हरण कर निशाचर ने उसका हरण कर लिया। विप्र फिर ही हम खोजते हैं। भगवान ने कहा ए ब्राह्मण, देखो ये भगवान के बोलने का एक लहजा है, ए ब्राह्मण इसका अर्थ क्या हुआ कि तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बन करके आया है। जब तू ये जान सकता है कि हम क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय का रूप बनाए हुए हैं, तो क्या हम नहीं जान सकते। तो विप्र फिर ही हम खोजते हैं, ये ब्राह्मण हम उसी की खोज में आए हैं। हमने हमारा चरित्र तो कह दिया, तुम अपनी कथा कहो। आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने हमारा चरित्र कह दिया, तुम अपनी कथा कहो। अरे तू मेरे सामने ब्राह्मण बनकर के क्यों आया है, मैं तो ऐसा क्षत्रिय रूप बना सकता हूँ क्यों, मैं तो चरित करता हूँ। चरित करने का अधिकार केवल भगवान को ही है, कि है तो और दिखे और, अजन्मा होकर जन्म लेना ये भगवान का चरित्र है। और भगवान की क्या क्या बताए, अजन्मा होकर जन्म लेना, सर्वव्यापक होकर के एक जगह लीला करना, ये तो है भगवान की लीला। इसलिए कहा ये तो मैं तो चरित्र कर सकता हूँ, तू अपनी कथा कहो यार, तू यूं क्यों फालतू ब्राह्मण बनकर के आया। कहो विप्र निज कथा बुझाई, दो बार भगवान ने विप्र कहा है ब्राह्मण अपनी कथा कहो। दो बार ये ब्राह्मण ब्राह्मण बोले ना, तो देखो गोस्वामी जी के प्रभु पहचान कहा हम, प्रभु पहचान परे गई चरणा। अरे ये तो साक्षात भगवान है, उनके चरणों में गिर गया। भगवान कैसे कैसे जाने आप भगवान को, इसलिए जाना कि चरित और कथा का भेद किया। और भगवान ने विप्र माने ए ब्राह्मण, ये जो बोलने का तरीका था इससे भी पहचान लिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। अब देखो भगवान शंकर क्या बोलते हैं, पार्वती उसका सुख मैं नहीं कह सकता हूँ, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी चरणों में गिरे, वो सुख मैं कह नहीं सकता हूँ। क्यों जी, आप क्यों नहीं कह सकते, तो बस समझ लो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। कई लोग शंका करते हैं कि भाई ये हनुमान जी वायुपुत्र भी बताया जाता है, केसरी नंदन भी कहा जाता है, और स्वयं ये हनुमान चालीसा में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय पवन का बेटा है, वायु का बेटा, और शंकर सुवन और केसरी नंदन या अंजनी नंदन, तो अंजनी नंदन तो ठीक है, लेकिन तीन के बेटे हैं, ये क्या चीज है। तो वास्तव में हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ है, जिस खीर से राम जी का अवतार हुआ उसी खीर से हनुमान जी का अवतार हुआ। तो हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ, कि भगवान शंकर हनुमान जी बनकर आए। भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए। तो ये देवता लोग अपने भाव से आते हैं और भगवत शक्ति है शंकर भगवान की जो शक्ति। अब देखो आप पूरे रामायण में हनुमान जी और भगवान शंकर का कहीं मिलन नहीं है ऐसे, हनुमान शंकर का इनका मिलन नहीं है। अवान्तर कथाएं आती है, हनुमान जी महाराज एक शिवलिंग को लेकर के और यूं करके अभी उठाने लगे तो उठे नहीं, शिवलिंग उठा नहीं उनसे, हनुमान जी ने खूब जोर लगाया। वो क्या है, अब हनुमान जी तो शिव जी है, शिव जी हनुमान जी है। तो ये जैसे वायु देवता था, तो पहले आपने सुना ना कि जिस समय आकाशवाणी हुई और कश्यप और अदिति ये राजा दशरथ और कौशल्या बनकर आए हैं, और राम जी ने कहा कि हे विदो, भगवान ने कहा हे विदाता मैं वहां पर राम रूप से अवतार लूंगा और तुम बंदर लोग हो जो सब के सब देवताओं में चले जाओ, तुम देवता लोग बंदरों में चले जाओ। तब जो है ये देवता लोग बंदर बनकर के आया, तो सबसे ज्यादा शक्ति है वायु की। तो वायु देवता आए तो वे वायु देवता अदेह संसर्ग से अंजनी के संकल्प में आए और भगवान शंकर है वो सेवा संकल्प से आए। इस कारण से केसरी के क्षेत्रज पुत्र है और वायु है और शंकर जी है, तो वायु का जो बल है, वायु का जो संकल्प है और भगवान शिव का जो संकल्प है, इसके कारण से हनुमान जी महाराज संकल्पज पुत्र है, भगवान शंकर के और भगवान देवता वायु के देवता है। तो ये सब हम भगवान पहचानते थे। तो भगवान ने कहा कि कहो विप्र निज कथा, तू मेरे सामने आया और ब्राह्मण बनकर के आया, मैं जानता नहीं हूं क्या तुमको? तो प्रभु पहचाना। फिर हनुमान जी महाराज बड़ा पश्चाताप करते हैं कि महाराज आप मुझे ये कहते हैं कि कथा सुनाओ, तुम्हारी कथा सुनाओ। महाराज मेरा तो नियाव है, मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूँ, तुम पूछो कस नर की नाई, आप एक मनुष्य के समान कैसे पूछ रहे हो? मैं तो आपकी माया में भूल गया महाराज। देखो एक तो मैं वैसे ही मंद बुद्धि वाला, एक मोह के अंदर पड़ा हुआ। जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं पहचानता तब तक वो मोह में ही रहता है, और फिर महाराज आप मुझे यदि भुला दोगे तो दूसरा कौन मुझे पहचानेगा? महाराज मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ। जानौ नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। पर एक मेरी इच्छा है कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूँ, ये स्वामी सेवक भाव में जरा सा भी अंतर नहीं आना चाहिए, बस ये हमारी हार्दिक इच्छा है। आपकी माया से ही महाराज संसार में भटक रहा हूँ और मेरे से कोई भजन साधन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है महाराज। जैसे सेवक होता है वो अपने स्वामी के भरोसे रहता है, नौकर है वो ये नहीं कहता कि आज रोटी कहाँ खाएंगे, जो मालिक खाएगा वो रोटी हमको मिलेगी। तो सेवक होता है वो स्वामी के भरोसे रहता है, और ऐसे बच्चा होता है वो माँ के भरोसे रहता है, माँ ही बच्चे को पालती पोसती है। ऐसे महाराज हम तो आपके भरोसे निश्चिंत है, अब आप जानो आपका काम जाने, ऐसा कहकर के वो अपने वास्तविक बंदर रूप में प्रकट हो गए। तब भगवान ने उनको ऊपर उठाया और अपने नेत्र छाती से लगाया, नेत्र जल से उनको प्यार से हनुमान जी को जो है स्वीकार किया। राम जी महाराज कहने लगे अरे हनुमान सुनु कपि जी मानस जनी उना, तुम मन में कोई विचार मत करना, तुम हमको लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। अब लक्ष्मण कोई गलती कर जाए तो उस गलती को गलती थोड़ी मानेंगे, ऐसे ही तुम यदि भूल भी गए हमको तो हम कोई उसमें नाराज नहीं होंगे। एक बात बताऊं हनुमान, हमारा स्वभाव है, लोग कहते हैं कि राम तो सब समदर्शी हैं, सबके ऊपर एक दृष्टि है, ये कहते हैं लेकिन एक दृष्टि मेरी है नहीं, मेरा पक्षपात तो होता है भाई। क्या महाराज क्या पक्षपात होता है? कि सेवक प्रिय। अपने सेवक के साथ में बहुत प्रेम करता हूँ। और देखो हनुमान जिसकी अनन्य भावना रहती है कि मैं तो सेवक हूँ और सचराचर चर अचर के स्वामी भगवान वो मेरे स्वामी है, ऐसा जिनके मन में भाव रहता है उस अनन्य भाव के मैं अधीन हो जाता हूँ। मैं समदर्शी हूँ नहीं, लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, वास्तव में हूँ नहीं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये मेरे भगवान मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं, तो भगवान की कृपा पर दृष्टि जाते ही हनुमान जी के हृदय की शूल मिट गई। देखो हमारे मन में जितनी चिंताएं होती हैं, जितना दुख होता है, वो भगवान की कृपा को भूलने के कारण से होता है। देखो ये चीज है हमारी, ये चीज यदि इधर उधर कहीं रह जाए हमको, यार ये कहाँ गई, वो चमचेड़ कहाँ गई, पुस्तक। ऐसे ही हमारे मन में चिंता होती है, ऐसे ही भगवान की दया पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हमारी दृष्टि में भगवान की दया ओझल हो जाती है, तो ये संसार की चिंताएं आती है। आज हनुमान जी महाराज की दृष्टि भगवान की दया पर चली गई। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, सब सूल उनके समाप्त हो गए। अरे भगवान इतने दयालु है, भगवान कितने हमारे पर प्रेम रखते हैं, कितनी समदर्शी कह, मुझे समदर्शी कहते हैं लेकिन मैं समदर्शी नहीं हूँ, कैसी भगवान की कृपा है। अब और सब पंचायती छोड़ करके हनुमान जी कहने लगे, हे नाथ, इस शैल के ऊपर पर्वत के ऊपर बानर राज सुग्रीव विराजमान है, आप उनके साथ मैत्री कीजिए और उनको दीन जान करके अभय कीजिए। दीन जान करके, दीन माने गरीब, तो यहाँ गरीब से तात्पर्य यह नहीं है कि सुग्रीव है उसका राज्य चला गया, उसकी स्त्री बाली ने ले ली, ऐसा नहीं। दीन जान, यहाँ दीन का अर्थ होता है, सब जगह यही बात है, दीन बंधु भगवान है, तो गरीबी से तात्पर्य नहीं है, लौकिक संपत्ति जिसके पास नहीं है वो गरीब, ऐसा नहीं। दीन का अर्थ है जिसके पास भजन साधन का बल नहीं है, जिसके पास कोई भजन साधन का बल नहीं। क्या महाराज मैं बड़ा दीन हूँ, दीन माने भजन साधन का बल नहीं। खूब भजन करने वाले संतों ने भी कहा है महाराज मैं बड़ा दीन हूँ, तो वो ऐसा नहीं समझते कि हम भजन करते हैं, वो कह रहे भगवान की कृपा के सामने हमारा तो कुछ भजन है ही नहीं। भगवान ने हमको मानव शरीर भजन करने के लिए दिया, तो भगवान ने पहले हमारे पर कृपा की है ना, गर्भवास में हमको रखा भगवान ने, जहाँ केवल मौत ही मौत है वहाँ पर भगवान ने हमको जिलाया, फिर जिस शरीर के अंदर इतनी गंदगी रहती है उसी शरीर के अंदर उस बच्चे के लिए भगवान कैसा दूध तैयार करते हैं माता के शरीर में, जिस शरीर के अंदर मांस है, जिस शरीर के अंदर मलमूत्र भरा पड़ा है, जिस शरीर के अंदर हड्डी है, कोई शरीर में अच्छी चीज है ही नहीं, उसी शरीर के अंदर भगवान कृपा कर कैसे दूध भेजते हैं, और वो भी दूध कैसा देते हैं भगवान, न गर्म है न ठंडा है, न कोई उसको जो है उसमें कुछ मिलावट है, कुछ नहीं है, बस ऐसा उसके लिए उपयोगी दूध बना के भेजते हैं। ऐसी दया को याद करने वाले महापुरुष भगवान के भजन का तो बल रखते ही नहीं है, और भगवान की कृपा के सामने वे कहते हैं महाराज कितनी कृपा की, इस कृपा के लायक मैं नहीं था, ऐसी जिसके अंदर भावना है वो दीन है। तो इस दीन भाव से जो भगवान को चाहते हैं उनके लिए भगवान दीननाथ है, दीन बंधु है। हमारे हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि सुग्रीव जी हैं, इनको जानो महाराज, कोई भजन साधन तो बिचारे ने किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, केवल ये मिल जाए और वो मिल जाए, अपने भाई के साथ में बैर विरोध कर लिया और अपनी जान बचाता हुआ बिचारा यहाँ पर बैठा है। वो आपकी सहायता करेगा महाराज, उसके पास करोड़ों बंदर है, करोड़ों बंदर तो है ही नहीं अभी, अभी तो 5 बंदर थे उनके पास, सुग्रीव सहित 5 थे, एक तो सुग्रीव, सुग्रीव के साथ में 4 बस, और कोई था ही नहीं। कहते हैं ये करोड़ों बंदरों को भेजेगा, कि कब भेजेगा, कि आप जब उसके साथ मित्रता करेंगे और उसको अभय प्रदान कर देंगे ना, फिर देखना आप सुग्रीव कैसी आपकी सहायता करता है। तो फिर चलो वो पर्वतराज महाराज वहां चलना है, चलो। ऐसे नहीं महाराज, मैं सुग्रीव का सेवक हूं ना, तो मैं आपको अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। तब जो है हनुमान जी महाराज अपना बड़ा रूप बनाए, दोनों को पीठ पर ले गए, ले जा करके सीधे पर्वत। हनुमान राम जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये बड़ा बुद्धिमान है, बल वाला है, नम्र है, भक्त है, भगवान की उसके ऊपर कृपा हो गई। सुग्रीव की और राम जी की मैत्री करवाई, अग्नि की साक्षी में मित्रता करवाई। ये अग्नि की साक्षी में तो विवाह होता है, ये मैत्री के लिए अग्नि की साक्षी क्यों? अग्नि की साक्षी अग्नि देवता है, वो तो देवता को साक्षी करके जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार निभने वाला होता है। पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए, प्रेम दृढ़ रहे उससे अग्नि की साक्षी में। मित्रता में कहीं कमी आ जाए अग्नि को याद कर लो। अपने यहाँ भारतीय विवाह पद्धति में कभी कभी पति नाराज होकर पत्नी को कुछ कड़वी बात बोल देते थे, तो रोती हुई पत्नी एक ही बात बोलती थी कि आपने अग्नि की साक्षी में मुझे क्या वचन दिए थे। तो वहाँ पति को चुप होना पड़ता है कि वचन तो यही दिए थे, तुम्हारा भरण पोषण, तुम्हारे जीवन का भार, तुम्हारी सारी सुख सुविधा, तुम्हें किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो, तो मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से तुम्हें कोई तकलीफ न हो, इन सब का वचन दिया था, तो याद करो उसको। यदि अग्नि की साक्षी में ये बातें न हो तो मनुष्य तो आजकल यूं ही प्रमादी हो रहा है और प्रमादी हो जाए। तो हमारी ऋषि मुनियों की बड़ी अच्छी परंपरा थी कि भाई किसी को बड़े को बीच में रख करके कोई बात की जाए। आपके हमारे कोई विवाद हो गया तो भाई गांव के पंच लोग इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर के आपका हमारा विवाद सुलटा दे। अब कोई बात फिर बिगड़ने लगे तो पंचों को कहेंगे साहब देखो आपने तो ये निर्णय दिया था और ये आदमी इस निर्णय से विरुद्ध, तो हमको हमारे पर जिम्मेदारी आती है। ऐसे ही अग्नि की साक्षी में विवाह होते हैं, मैत्री होती है, जो भी संबंध स्थापित होते हैं उनमें अग्नि की तरफ से एक बल मिलता है और उसके तरफ से हमको जो है अपने मार्ग से हटने के लिए संकोच होता है। तो पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ा है। तब जो है लक्ष्मण जी ने सारा रामचरित्र सुनाया। हे महाराज सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी ने क्यों सुनाया जी? पहले तो राम जी ने वहां सुनाया, या लक्ष्मण जी क्यों सुना रहे हैं? कायदा होता है, प्रोटोकॉल। यदि किसी देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री उसके सामने जाकर स्वागत करेगा। किसी देश का राष्ट्रपति आता है तो हमारा राष्ट्रपति वहां जाएगा, बराबर की बात। सुग्रीव कौन है? बाली का छोटा भाई है। तो लक्ष्मण कौन है? कि राम जी का छोटा भाई है, इसलिए दोनों बराबर के हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी का बोलना ठीक है, तो फिर हनुमान जी के सामने भी राम जी क्यों बोले? वो एक भक्त और भगवान की बात है। भक्त और भगवान की जहाँ बात होती है वहाँ भगवान बोलते हुए अच्छे लगते हैं, और जहाँ राजाओं के और राज परिवारों की बातें होती है वहां पर अपने हिसाब से बोलना ठीक होता है। लक्ष्मण राम चरित्र सब भाखा, सारे चरित्र सुना दिया कि ऐसे ऐसे दशरथ जी महाराज के बेटा, ऐसे वरदान मिला, ऐसे चित्रकूट आए, ऐसे नासिक आए, पंचवटी आए, और इस प्रकार से सीता ने हरण कर लिया, सीता का हरण कर लिया, सब सुना। तब सुग्रीव ने कहा हो अरे महाराज, एक दिन की बात है, मैं यहाँ मंत्रियों के बीच में बैठ करके कुछ सोच विचार कर रहा था, उस समय एक स्त्री आकाश मार्ग से जा रही थी। एक बार तो हमारे मन में विचार आया कि बेचारी कुर्रा रही है और ये ऐसे करे हम जा करके उसको पकड़ दें, उस ले जाने वाले को। फिर देखा क्या पता कौन है, हमें क्या मतलब, ऐसे करके हमने छोड़ दिया। वो सीता ही थी, वो राम राम बोल रही थी, राम राम हा राम पुकारी। महाराज हमको पता नहीं था तो हम तो उसी समय पकड़ लेते। और उसने बिचारी ने हमसे सहायता की आकांक्षा भी की। हमारी देह की दीन पट डारी, कपड़ा था ये डाल दिया हमने अल्लाह। जाने क्या उस समय मेरे दिमाग में आया, हम लोग क्यों ध्यान दें। वो मैंने वो डाला तो हमारे सामने गिरा, तो मैंने वो लेकर के अपने यहां सुरक्षित रख लिया। अरे तुम्हारे पास वो है कपड़ा है? कहा महाराज है, इसमें क्या व्यग्र क्यों होते हो आप? अरे जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। तब लाकर के भगवान ने दिया, मांगा राम तुरंत ही दीना, और पट उरलाए, उस पट को उरलाए सोच अति के ना उसको ले। अब राम जी झर झर प्रेम के अंदर डूब गए। सुग्रीव जी ने कहा महाराज आप तो आनंद स्वरूप है, लक्ष्मण जी ने हमको आपकी कथा सुनाई है, उसमें तो ये कहा कि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा इस रूप में आए हैं, अब आपकी ये दशा कैसे हो गई महाराज? सब शोक को छोड़िए और जिस प्रकार से भी सीता मिलेगी सब प्रकार से हम लोग आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। तब भगवान ने कहा अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या यहाँ पर जो है कष्ट क्या है। तब उसने अपना पूरा कष्ट सुनाया। हम और बाली बड़े प्रेम से रहते थे, और एक बार की बात है कि मायावी नाम का एक राक्षस आया, मैसुत मायावी, मैं का बेटा मायावी राक्षस आया, बाली को ललकारा, फिर वो एक गुफा में चले गए। मेरे को कहा बाली ने कि एक पखवाड़े तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना हो, एक पखवाड़े तक मैं नहीं आऊं तब समझना मैं मारा गया। तो महाराज वो अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, तो एक महीना हो गया, तो उस एक महीने तक वो नहीं आया, और फिर एक खून का रेड़ा चला, बहुत खून निकला। तो मैंने देखा कि ये बाली मारा गया और ये राक्षस मुझे और मारेगा। एक पत्थर की शिला मैंने गुफा के ऊपर रख दी, मैं भगा भगा यहां आया। यहां आने पर लोगों ने मुझे राजा बना दिया, और राजा बनाने के बाद में मैं यहां रहने लगा। इतने में ही मेरा भाई आ गया। असल में बाली ने उसको मारा था और खून था उस राक्षस का। देख ही मोई जिए भेद बढ़ावा, और मुझे राजगद्दी पर बैठ के देखा, उसके मन में संदेह हो गया। तब उसने मुझे इतना मारा, इतना मारा, रिपुसम मोई मारे से अति भारी, भयंकर रूप से मुझे मारा और सर्वस्व मेरा छीन लिया। और तो छीन लिया कोई बात नहीं महाराज, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। यहाँ सांप के कारण से आता नहीं है, बस इसी कारण से मैं दुबका छिपका फिरा रहता हूँ, बड़ा भयभीत होकर के रह रहा हूँ। दीन दयाल भगवान ने कहा कि देखो सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही, एक ही बाण, एक बाण से मारूंगा, तुम इतनी चिंता मत करो। ब्रह्मा जी की शरण में चला जाए, शंकर की शरण में चला जाए, तो भी उसके प्राण बचने वाले नहीं। देखो ब्रह्मा और शंकर दो का ही नाम लिया, विष्णु का नाम नहीं लिया, विष्णु का नाम नहीं लिया। भगवान शंकर का विवाह हुआ, वहां पर विष्णु का नाम आता है, और भी कई जगह विष्णु सहित नाम आते हैं, यहाँ ब्रह्म और रुद्र दो ही कहा है। क्योंकि सुग्रीव इस बात को समझेगा ही नहीं कि विष्णु एक महाविष्णु होता है, एक विष्णु होता है, ऐसे समझेगा नहीं। इसलिए कहा कि एक से ही काम चला लो, तुम विष्णु से ही काम चला लो। तो ब्रह्म और रुद्र दो का नाम लिया, विष्णु का नाम नहीं लिया, और इसके मन में संदेह हो जाएगा। तो मैं जो है एक बाण से मार दूंगा। देखो सुग्रीव, मित्र के दुख, मित्र का दुख होता है वो अपना ही दुख होना चाहिए। जो अपने दुख को तो कुछ नहीं गिनता और मित्र का दुख है उसको वो पहाड़ के समान समझता है, ऐसा मित्र ही असली मित्र होता है। और एक बात और भी है कि मित्र जब उपदेश देता हो, हित की बात कहता हो, तो उस उसकी बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुपथ निपार निवार सुपंथ चला हुआ। और मित्र वो होता है जो लोगों के सामने गुणों को प्रकट करता है, अवगुणों को छिपाता है, वो मित्र के लक्षण होते हैं। वो कोई भी कमी होगी तो उसको कह देंगे देखो जी आप में ये कमी है, मित्र मित्र में, लेकिन औरों के सामने वो बात नहीं कहता। गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा, और विपत्ति काल कर, और जब विपत्ति का समय आता है तो उसका साथ नहीं छोड़ता है, ऐसे श्रुतियों ने कहा है। और जो आगे तो बड़ी मीठी मीठी बात करता है, पीछे उसकी काट करता है, ऐसा जो कुटिल व्यक्ति होता है भाई, उसकी गति सांप की तरह से होती है और उससे सदा ही दूर रहना चाहिए। चार चीजें होती हैं, इनसे मनुष्य को बड़ी पीड़ा होती है। एक तो सेवक सठ, अपना नौकर हो वो है दुष्ट प्रकृति का। एक राजा है लेकिन बहुत कंजूस। एक स्त्री है जिसका चरित्र अच्छा नहीं। एक मित्र है जो कपट से भरा हुआ है। ये चार चीजें हैं शूल समचारी, शूल के समान होते हैं। ठीक है ठीक है सुग्रीव, तुम सारी चिंता मेरे भरोसे छोड़ दो। अब सुग्रीव को यहाँ देखो, सुग्रीव को यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए सब। जब भगवान ने इतना तक कह दिया कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे, तब क्या महाराज आपसे कैसे पार पड़ेगी। दुंदुभी नाम का राक्षस, उसको बाली ने मारा है। ये ताड़ वृक्ष है ना, ताड़ वृक्ष को यूं हिलाता था तो सारे पत्ते नीचे गिर जाते थे, इतना बलवान था। भगवान ने फिर ताल वृक्षों के अंदर बाण छोड़ा ही, बाण छोड़ा तो सात ताड़ के वृक्षों में से वो बाण गया, फिर जमीन में से गया, झरना पैदा हुआ और वो बाण भगवान के तरकश में आया। तब जाकर के उसको संतोष हुआ, भगवान की वाणी पर नहीं हुआ, भगवान ने जो किया ना उस पर उसको संतोष हुआ। फिर कहने लगा महाराज बस बस, मेरी तो एक ये बाधा हट जाएगी फिर आपका खूब भजन करूंगा। जैसे हम लोग हैं संसार में रहने वाले लोग, ठीक वैसे ही सुग्रीव की स्थिति है कि महाराज ये संपत्ति सब विनाशकारी है, परिवार मान बड़ाई आदर सत्कार ये सब महाराज राम भक्ति में बाधक देने वाले होते हैं, ये माया से ही संसार दिखता है, वास्तविक दृष्टि से तो है नहीं, बस एक बाली है, ये एक मेरी आफत मिट जाए तो फिर बस आपका रात दिन भजन करूंगा। हम लोग ये कहते हैं ये आफत मिट जाए तो बस भगवान का भजन करेंगे, बस बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, पोता हो जाए। हम लोग भी देखते हैं ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। जब हम भगवान के भजन को किसी एक काम के बाद करने की सोचते हैं, इसका मतलब है भगवान का भजन दो नंबर का है, ये काम एक नंबर का, ये पहले होना चाहिए। भगवान अब क्या बोले, भगवान हंसने लग गए। भगवान ने कहा कि देख तू जो कह रहा है वो सत्य है, लेकिन मेरी बात झूठी नहीं है। जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई, तू जो कह रहा है तू कहता है इतना ही सच्चा है, तू जो कहता है ना ये इतना ही सच्चा है, बाकी तेरे अंदर ये बात उतरी हुई नहीं है। सखा जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषान होई, मेरी बात में झूठापना नहीं, तेरी बात में झूठापना आ सकता है। ऐसे भगवान ने उसको इशारे में समझा दिया और कहा कि जाओ तुम बाली से युद्ध करने जाओ। वो बाली से युद्ध करने के लिए रवाना हुआ तो तारा ने मना किया बाली को कि महाराज ठहरो, कहाँ जा रहे हो। सुग्रीव ललकार रहा है, सुग्रीव को मारने के लिए जाऊंगा, हमारा मेरे पास गुप्तचरों से सूचना मिली है, कोसलेश महाराज दशरथ के दो बेटा जंगल में फिर रहे हैं, वे काल को जीतने में समर्थ है, उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली है और आज सुग्रीव उन्हीं के बल के ऊपर नाच रहा है, नहीं तो सुग्रीव तो आपके नाम से कांपता है। कैसे देखो कैसा उसके अंदर निर्भीकता का स्वर है, विचार तो करो, आज आप मत जाओ। बाली कहने लगा ए तारे तुम बहुत डरपोक हो, बाली की पत्नी होकर इतना तुम डरती हो। अच्छा मैं तो कोई बात नहीं, बलहीन भी हूँ, लेकिन भगवान की तरफ तो विचार करो, वे रघुनाथ समदर्शी है, वो मुझे क्यों मारेंगे। देखो तारे उनके लिए सब बराबर है, सुग्रीव भी वैसा ही है तो ये बाली भी वैसा ही है। अच्छा तुम्हारी बात मैं मान भी लूं कि वो मुझे मार ही देंगे, तो ऐसा मरना कहाँ लिखा है तारे, जो कदाचि मोहि मार रही तो पुनी होम सनात। चला आपस में खूब दोनों की लड़ाई हुई, सुग्रीव को इतना मारा, ऐसा पहले नहीं मारा था, इतना ज्यादा मारा उसको, मुष्टि प्रहार वज्र सम लगा, वज्र के समान उसके मुक्के पड़े। सुग्रीव तो भगा वहां, राम जी को उपालंब दिया कि महाराज आपको यदि यही करना था तो ये क्यों किया महाराज, मेरे को पिटवाया क्यों। भगवान कहने लगे भाई क्या बताऊं सुग्रीव, तुम दोनों एक जैसे थे, तुम दोनों को देखकर मेरे मन में भ्रम हो गया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, कहीं मैं मित्र को मार देता तो कितना पाप लगता, अभी तो कोई बात नहीं थोड़े बहुत मुक्के ही लगे हैं, नहीं तो मेरे बाण से तुमको कैसे मारता, मुझे तो भ्रम हो गया। देखो भगवान की लीला है ये, भ्रम क्या हो गया, सुग्रीव ने भगवान पर जो भ्रम किया था, संदेह किया ना, उसका दंड दिलवाया भगवान ने ताकि इसको आगे दंड न भोगना पड़े। खूब पिटवा दिया कि महाराज अब मैं तो अब जाऊं, फिर मैं तो नहीं जाऊंगा, रोने लग गया। फिर भगवान उसके हाथ फेरे, हाथ फेरे एकदम ताजा हो गया। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुलिस गई सब पीरा, अब ले तेरे गले में पहले से जयमाला पहना देते ला, जीतने के बाद तो दुनिया पहनाती है, हम तेरे को भावी विजय के लिए पहले से ही जयमाला पहना देते हैं, जाओ बाली के साथ अब करो युद्ध। अब वो बाली के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वालेकी अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय भक्तवत्सल भगवान आनंद कंद भगवान की जय।